نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. دیکھتے ہیں آج کا لیسن ہم اپنا، تفسیر آیت 65 سے 74 تک انشاءاللہ. جیسے کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں، جب سے ہم نے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو واقعات ہیں یہ پڑھنے شروع کیے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس سپارے کے اینڈ تک آپ انہی واقعات کو دیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اور آپ نے پہلے پڑھا منوسلوا دیا، کیسے ان کو ایک بستی کے اندر، جس کی یعنی جو ان کا اصل میں ایم تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، اس کے اندر ان کے لیے آسانی کر دی کہ تم داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے آگے سے کیا کیا، اللہ نے چشمے ان کے لیے پھاڑ دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا، اور ان کی حرکتیں کیسی تھیں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی اگر یاد کر سکے، استستبدلون الذی ہو ادنی بالذی ہو خیر، تو اس کو یاد کر لے اور زندگی میں دیکھیں کہاں کہاں بدل رہے ہیں ہم، ادنا لے رہے ہیں اور خیر کو چھوڑ رہے ہیں. آنکھیں اللہ نے دی ہیں، کس لیے؟ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کے قرآن کو پڑھو. ہم کیا کرتے ہیں، ادنا لے لیتے ہیں، ادنا اس سے کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کبھی فون پہ لگے ہیں، کبھی کہیں کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہ دیکھنے کی فرصت نہیں. کانوں سے ہر چیز سن رہے ہیں لیکن اللہ کے کلام کو سننے کی فرصت نہیں، اللہ کی باتیں سننے کی فرصت نہیں. تو کیا کر رہے ہیں، زندگی میں سودے کر رہے ہیں نا، جگہ جگہ سودے کر رہے ہیں. وقت ملا ہوا ہے، اس کو کہاں گزار رہے ہیں، ادنا میں یا خیر دے کے ادنا لے رہے ہیں. وہ وقت گزار سکتے ہیں آپ کسی کنسٹرکٹیو کام میں، کسی اچھے کام میں جو آپ کی آخرت کے لیے کام آ سکے، لیکن اس میں کیا کر رہے ہیں، تو جگہ جگہ یہی کام کر رہے ہیں. کئی لوگ ہیں جو کہ بیویوں کو چھوڑ کے اور حرام جگہ پہ جا کے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ، خیر کو چھوڑ کے ادنا لیتے ہیں. تو یہ بات ایسا یعنی ایک یونیورسل ایک فیکٹ ہے کہ جو جب آپ اس کو یاد کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی جگہوں پہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، کہاں کہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، پھر اس کو ترک کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور آج بھی ہم دو قصے دیکھیں گے، دو قصے، اور پھر اس کے بعد ایک کنکلوژن بھی دیکھیں گے، آیت 74 میں کنکلوژن. لیکن وہ دو قصے بھی انہی کی حرکات کو بتاتے ہیں کہ ان کی کیسی نیچر بن چکی تھی، کیسے یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے جو ان کے ایٹیچیوڈ تھے نا، وہ کیسے تھے. جب اللہ کا کوئی حکم آتا تھا تو صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا تھا، سمعنا واطعنا، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، بس اگلی کوئی بات نہیں. اور ان کے ایٹیچیوڈ کیا ہوتے تھے، آپ آیت نمبر 65 اور 66 میں ایک واقعہ دیکھیں گے، اس کے بعد 67 سے 73 تک آپ دوسرا واقعہ دیکھیں گے. دونوں میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے جو ان کا بیہیویئر تھا وہ بتایا گیا. دو ہی واقعات آج ہم نے دیکھنے، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سنتے ہیں تو ہمارے کیا بیہیویئرز ہوتے ہیں، کیا ان سے سملر ہوتے ہیں یا صحابہ سے سملر ہوتے ہیں، ہونے کس سے سملر چاہیے. ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، وہ تو ہمارے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں. ہم نے ان کو کاپی کرنے کی بجائے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا، جو مغدوب علیہم ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ باتیں بتائی ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے تھے. تو اپنے بیہیویئرز کو شفٹ کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو اپنانا ہے، اور یہاں سے یہ چیزیں سیکھ کے کبھی کبھی انسان کو دیکھیں اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں چلتا. کبھی کبھی انسان اپنی خود کو کام کر رہا ہوتا ہے لیکن نہیں سمجھتا، لیکن جب اس کو کسی مثال سے بتایا جاتا ہے نا، जैसे आप कहते हैं अपने बच्चे को, बेटे फलां की तरह नहीं बनना, फलां देखो फलां ऐसे ऐसे करा, ऐसे उसने किया, तो आपके लिए एक वार्निंग हो जाती है कि हाँ मैं भी तो ऐसे करता हूँ, देखो वो अपना वक्त जाया करता है, वो ये करता है, वो उधर, तो आपको फिर एहसास होता है कि वो तो मैं भी कर रहा हूँ, ये गलत की काम है। इसी तरह यहां पर उनकी मिसाल दी गई है, उनकी कुछ चीजों को हाईलाइट किया गया है कि देखो अल्लाह के हुक्मों के आगे वो उनके बिहेवियर कैसे होते थे, तुमने ऐसे नहीं करना, ठीक है, वरना हमें कोई ऐसी कहानियां नहीं सुनाई जा रही, या हमने कहानी सुन ली, अच्छा अच्छा यहूदियों की कहानी, वो तो ऐसे थे, उसके बाद क्या। तो देखते हैं पहला किस्सा, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, अलबत्ता तहकीक, और अलबत्ता तहकीक जान लिया तुमने, यानी तुम अच्छी तरह जानते हो, अल्लदीना उन लोगों को, किन को, اعتدوا जिन्होंने ज्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिर सब्त हफ्ते के दिन के बारे में, यानी तुम में ऐसे भी लोग गुजरे जिन्होंने हफ्ते के दिन के बारे में ज्यादती की। और ये बताया जा रहा है यहूदे मदीना को भी, और उसके बाद हम सब के लिए भी एक नसीहत है, उनको बताया जा रहा है, तुम में से ही थे, तुम अच्छी तरह जानते हो, हालांकि उनकी तौरात में नहीं था ये, तो ये कैसे फिर जानते थे, जुबान दर जुबान इनके आगे चला आ रहा था ये किस्सा कि किस तरह से हुआ था, क्योंकि कुरआने पाक में जैसे डिटेल है ना इस किस्से की, इनको भी नहीं ऐसे पता था, तो इनको भी कुरान से ही पता चला इसकी डिटेल, मगर ये वो जानते थे अच्छी तरह कि हमारे बड़ों में से एक ऐसे गुजरे हैं। तो क्या हुआ था, ये थोड़ा सा वाकया पहले मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड मालूम। हुआ ये कि एक बस्ती थी, कहा जाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ये बस्ती थी, और इसमें ये एक यानी समंदर के किनारे रहते थे लोग, इला इस बस्ती का नाम था, और इन लोगों को उनका जो पेशा था, प्रोफेशन था, वो मछलियां पकड़ना था, मछलियों का शिकार करके, जैसे मछेरे हैं वो मछलियां बेचते हैं। अब इनके लिए सैटरडे एक ऐसा दिन था जिसके बारे में कहा गया था कि आपने इसमें कोई ये कारोबार, जॉब, ऐसा कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ ये दिन अल्लाह की इबादत के लिए रखना, जैसे हमारे लिए भी एक दिन है, मगर हमारे लिए घड़ी है, और वो है जुमे की घड़ी, यानी जुमे का जो टाइम है ना, उस पे हमें भी कहा गया कि आप काम कारोबार छोड़ दो और जुमे के लिए जाओ, ठीक है, तो इनके लिए पूरा दिन था, हमें तो ये इजाजत है कि जुमे के बाद अब आप निकलो और फिर उसके बाद अपने काम काज करो, आप आगे इंशाल्लाह ताला सूरह जुमा में पढ़ेंगे लेकिन इनको कहा गया था पूरा सैटरडे का दिन आपने कोई काम नहीं करना, कोई शिकार, कोई यानी कारोबार नहीं करना। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, और आजमाइश क्या थी कि हफ्ते वाले दिन इस कदर मछलियां आती थी, इतनी मछलियां आती थी कि पानी के ऊपर उछलती कूदती थी, बाकी दिनों में कोई इतनी नजर नहीं आती थी। अब ये देखते थे, दिल तो ललचाता था कि आए आज हम पकड़ नहीं सकते और आज कितनी मछली है। अब एक जमाने तक तो ठीक है, खामोश रहे कि भाई हमें मना किया गया, रुके रहे, लेकिन फिर इन्होंने एक हीला निकाला, हीला क्या इस चीज को कहते हैं, क्या एक्सक्यूज निकाला, एक रास्ता निकाला इन्होंने, कि इन्होंने कहा ठीक है हम हफ्ते वाले दिन तो नहीं पकड़ सकते, तो इन्होंने समंदर के किनारे ना गड़े खोद दिए, और बाज जगह आता है इन्होंने जाल डाल दिए समंदर के अंदर, बाज जगह आता है गड़े खोद दिए, तो जब गड़े खोद दिए तो जब समंदर यानी तेज तो हो यानी आती थी, समंदर तेज आगे आता है तो वो उसके साथ मछलियां भी आके उस गड़े में गिर जाती थी, अब समंदर तो वापस चला जाता है ना, लेकिन मछलियां उसी गड़े में रह जाती थी, और ये संडे को फिर पकड़ लेते थे, और जहां पे आता है कि ये जाल डालते थे तो जाल फ्राइडे को डाल दिया, सैटरडे को तो कुछ नहीं किया, जाल में मछली फंस गई, संडे को निकाल ली, बात तो वही हो गई ना। अब इन्होंने जब ये हीला किया तो कुछ लोगों ने, सारी सारी बस्ती ने नहीं किया था, कुछ लोगों ने ऐसा किया और कुछ लोग थे जिन्होंने इनको कहा कि ये देखो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मना किया गया है, तो उनको मना करने लगे। लेकिन उनका जवाब क्या होता था, हम हफ्ते के दिन तो नहीं ना कुछ कर रहे, हम तो इतवार वाले दिन पकड़ते हैं। और एक तीसरा भी ग्रोह था, यानी तीन ग्रोह हो गए इस कॉम में, ये बात को जरा गौर से सुनिएगा, तीन ग्रोह, एक पकड़ता था, एक ना सही लोग थे, मुत्तकी लोग थे, अल्लाह से डरने वाले थे, कहते ना ये काम ना करो। तीसरा एक ग्रोह क्या था, कहते थे माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या, तुम क्यों इनको नसीहतें करने लगे हुए हो, अपना काम करो, जाओ करते हैं तो करते रहे, वो उनका और अल्लाह का मामला, तुम्हें क्या, ऐसे तुम क्यों मना करते हो उनको। मसलहत के तहत तुम अपने करो, वो अपने कर रहे हैं जो करते रहे, वो खुद तो नहीं करते थे लेकिन मना भी नहीं करते थे। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप की बात सुने, ये खुद नहीं करते थे लेकिन किसी को कुछ कहते भी नहीं थे, और इनको कहते थे तुम क्यों आवाज कर रहे हो, अगर खुद ही अल्लाह उनको हलाक कर देगा, खुद ही उनको अजाब दे देगा, जब नहीं मानते छोड़ो इनको। तो वो आगे से जवाब देते थे कि एक इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के हाँ कम अज कम हम माजूर हो जाएं कि अल्लाह हमने बता दिया था, नंबर टू ये शायद आज नहीं तो कल ये मान जाए और अल्लाह के अजाब से बच जाए। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक ये इस तरह से काम चलता रहा, उन्होंने भी नहीं सुनी इनकी नसीहत। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग जो ये मछलियां पकड़ते थे वो अपने घरों से नहीं निकले। जब ज्यादा देर हो गई तो लोगों ने जाके देखा तो अजीब ही मंजर देखा कि वो सारे के सारे लोग, सारे आदमी औरतें सब लोग वो बंदर बन चुके थे, और इनके घर जो इसी तरह बंद थे रात के, वो उसी तरह बंद थे, और अंदर ये हो चुका था, ऐसे बंदर थे, उनकी दुमे भी थी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, और हर एक को पहचाना जा सकता था, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। और जब इंसान पूछ सकता है कि भाई क्या ये वही थे, हाँ वही थे, इसलिए कि जब वो उनके पास जाते थे और उनसे कहते थे कि तुम्हें हम मना नहीं करते थे, तुम्हें हम कहते नहीं थे, तो वो आगे से हाँ करते थे और रोते थे अपने रिश्तेदारों को पहचान के, अपने लोगों को उनके करीब जा जाके रोते थे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। फिर उसके बाद ये 3 दिन तक जिंदा रहे और उसके बाद ये सारे के सारे मर गए, ना उनकी आगे कोई नस्ल चली ना कोई कुछ। हम ये नहीं कह सकते कि आज के जो बंदर हैं ये वही उनकी नस्ल चल रही है, ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी कौम में सूरत को मस्क करने का अजाब देता है तो उनकी नस्ल नहीं चलती, वो खत्म हो जाते हैं फिर। तो इसलिए ना आज के यहूदियों का उनसे कोई ऐसा है कि ये उनकी नस्ल से आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो अब हम देखते हैं इन आयात को ताकि आपको अब समझ आएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे ये मुख्तसर है, अगर किसी ने इसकी और डिटेल कुरान में पढ़नी हो तो सूरह आराफ में पढ़ सकता है, इंशाल्लाह वहां जाएंगे तो हम और भी इसकी डिटेल कुरान से ही पढ़ेंगे। वलकद अलिमतुमुल्लदीन आतदौ मिनकुम फिस्सब्त, तो कि अलबत्ता तहकीक जान लिया तुमने, तुम्हें पता है उन लोगों का जिन्होंने ज्यादती की तुम में से सब्त के दिन के बारे में। फकुलना, तो कहा हमने लहुम उनसे कूनू क़िरदतन ख़ासीन, तुम सब हो जाओ बंदर धुतकारे हुए, मसख शुदा, यानी तुम अब धुतकारे हुए बंदर, यानी ये एक तरह इनकी सजा थी कि अब तुम बंदर बन जाओ। अल्लाह ताला ने ये हुक्म इनके लिए कर दिया कि अब तुम, यानी अल्लाह ताला का ये भी एक, यानी एक कानून है कि अल्लाह ताला जो, यानी ऐसे लोग हैं जो लोग हीला साजी करते हैं, अल्लाह ताला को वो इतनी नागवार है। एक है अल्लाह के हुक्म को तोड़ना, एक है उसके अंदर हीला साजी करना, यानी एक्सक्यूजेस निकाल लेना कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ہم تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے. اور اللہ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے بعض دفعہ. ایسا ہے کہ آخرت میں تو جو سزا ہے وہ تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. اور یہاں پہ لقد تحقیق کے لیے آیا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا کی قسم، یعنی تم یقیناً تم اچھی طرح تمہیں پتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. یار ایسا ہوا تھا. اب ان کے لیے دیکھیں ایک بات اس کے اندر کیا ہے، ان کے لیے آزمائش آئی تو اس طرف سے آئی جو ان کو چیز پسند تھی. یہ للچائی بھی نظروں سے دیکھتے تھے کہ ہائے ہم مچھلیاں اتنی آتی ہیں اور ہم پکڑ نہیں سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ان کے لیے آزمائش بنایا تھا، یعنی اسی دن اللہ نے اتنی مچھلیاں بھیجی. ہو سکتا تھا کہ پورے ہفتے میں ہوتی، لیکن اللہ نے اسی دن بھیجی. اور یہاں پہ پتا چلتا ہے کسی کا تقویٰ، کہ کسی کے اندر اگر تقویٰ ہوتا ہے نا، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، تو وہی باز آ سکتا ہے. ورنہ بعض دفعہ زندگی میں مچھلیاں ہمارے سامنے بھی اچھلتی کودتی ہیں. جی ویسے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی ہم کہیں کام کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جہاں پر کوئی ایسی اللہ تعالی کی طرف سے پابندی ہے، مثلا ہے شراب نہیں بیچنی، خنزیر نہیں بیچنا، حرام ہے کوئی کاروبار، کوئی اور ایسی چیز اس کے اندر ہے، لاٹری ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی سود کا ہے جاب، کوئی ایسا کام ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ کہتے ہیں آپ حجاب کے ساتھ نہیں یہاں پہ آ سکتے. اب اس کے اندر پیسے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کاروبار کو آپ کرتے ہیں کہ ہائے ہم تو کوئی کاروبار ہی نہیں کر سکتے، ہم مسلمان ہیں، نہ ہم بینکوں سے لون لے سکتے، نہ ہم ایسے کر سکتے، ہم کیا کریں، ہمارے تو بڑی ریسٹرکٹڈ ہو گیا یہ. اب وہ مچھلیاں کود رہی ہیں آپ کے لیے، وہ اپرچونیٹیز آپ کے سامنے ہیں، اتنی آسانی ہے اس کے اندر، اور اب بڑا ہی فائدہ ہے، پروفٹ بہت ہے اس کے اندر، جبکہ دوسری طرف حلال میں اتنا پروفٹ نہیں ہے. اس دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں اگر میں حلال کاروبار کرتا ہوں، میں یہ ساری چیزیں نہیں کرتا، تو اس میں تو اتنی پے ہی نہیں ہے یا اس کے اندر اتنا منافع نہیں ہے. مگر اس وقت کیا یاد رکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہے اسی کے اندر میرے لیے خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے. اس کو پر بلائنڈ ٹرسٹ ہونا چاہیے اس بات پہ، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس میں میرے لیے شر ہی ہے، اور اس میں کوئی شر چھپا ہی ہوا ہے جو مجھے نہیں نظر آ رہا، لیکن اس میں شر ہے. جیسے ہم کچھ چیزوں سے ڈرتے ہیں نا، اس میں جرمز ہیں، یہ نہیں کھانا. آپ کو کیا پتا، اب ہم اپنے کئی ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم کئی چیزیں نہیں کھاتے، ہم پانی نہیں پیتے باہر کا، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی پیٹ خراب ہو جائے گا. اب آپ نے کوئی لازمی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہی ہونا نہیں ہے، لیکن ہمیں اگر شک بھی ہوتا ہے نا تو ہم اس چیز سے بچتے ہیں کہ مجھے یہاں سے نقصان نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ جب کسی کام سے منع فرما دیتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے، شک بھی نہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے. ہم اس کو کھانے کو کھانے سے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مزے کا ہو، صرف شک کی بنیاد پر کہ اس سے میں بیمار نہ ہو جاؤں. لیکن جہاں پہ یقین ہونا چاہیے وہاں پہ ہمارا یقین متزلزل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے. کیا یقین نہیں ہے ہمیں کہ اس میں برائی ہے، اس میں شر ہے، اس میں سزا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات کہ مچھلیاں بہت آئیں گی، صرف کام کاروبار میں ہی نہیں، بہت چیزوں میں اوپن اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، لیکن وہ کام حرام ہوتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا. آپ ہیلے کر کے اس کو کر بھی لیتے ہیں، اسی کو نہیں پتا چلتا، لیکن اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، تو مچھلیاں آئیں گی آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں بھی ایسے موقع آئیں گے جہاں پہ ہمیں بہت کچھ مزہ آ سکتا ہے، جہاں پہ ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، جہاں پہ ہمیں بڑا پروفٹ مل سکتا ہے، جہاں پہ ہم راتوں رات مالدار ہو سکتے ہیں، بڑا فن ہو سکتا ہے، یا بڑی اور کوئی اور مزے کی چیز ہے، ہمیں وہ اپرچونیٹیز ملیں گی اور وہ راستوں میں بکھری ہوں گی. لیکن ہمیں کیا چیز ہے جو ہمیں روکنے والی ہونی چاہیے؟ اللہ کا ڈر کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ سمجھ آئی. دوسری کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کہ تاویلیں نہ کرو. اللہ کے حکموں میں تاویل کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. کہ یعنی بات جو اللہ نے حرام کی ہے اس کے اندر ایسے ایکسکیوزز، ایسے لوپ ہولز نکال لینا، اور پھر اس کو کہنا کہ نہیں یہ تو ہم نے ایسے تھوڑی کیا ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے، آج کل کہتے ہیں ایسے لوگ، کوئی کہتا ہے جی شراب اتنی پی سکتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو، جب نشہ ہونے لگے تو پھر نہیں ہے، پھر ناجائز ہے، تو بس اتنی تو پی سکتے ہیں، نشہ حرام ہے نا تو ہم نے اتنی پی ہے. استغفر اللہ، یعنی کیسے ایک چیز کو جو حرام ہے، صریحاً حرام ہے، اس کو کیسے حلال بنا لی کہ بس ہم تو اتنی پی رہے ہیں. کیسے آپ کو پتا ہے یہودیوں کی یہ عادت ہی ہے کہ تعویلیں کرنا، جب ان کی عورتوں کو کہا گیا کور کرو اپنے بال کور کرو، تو انہوں نے کیا کیا، بال ہی شیو کرا لیے. اب بال ہی نہیں ہے، کور کس کو کریں، اب کور نہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب دیکھو نا کس طرح سے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ہیلا کر کے آج سود کو حلال کر لیا گیا، اور پھر نافرمانی کرنے کے لیے آسانی پتہ کیسے ہو جاتی ہے، گناہ کرنا پتہ کیسے آسان ہو جاتا ہے جب آپ تاویل کر لیتے ہیں. پھر تاویل کرنے سے اپنا من بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے، کیونکہ ورنہ تو اندر سے کچوکے لگتے رہیں گے نا، ضمیر کہے گا تو تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہی ہو. لیکن جب انسان تاویلیں کر لیتا ہے نا، میں تو ایسے جیسے انہوں نے کہا میں ہم ہفتے کو تھوڑی پکڑے، ہم تو اتوار کو پکڑے، اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کیا اور دوسروں کو بھی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے، ہمیں تو فلاں عالم ہے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا، حالانکہ اپنا دل کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، ہمیں تو فلاں ہے انہوں نے بس یہ بتا دیا، نہیں فلاں تو ایسے کہتے ہیں، نہیں، ہمارا تو یہ مقصد تھوڑی ہے، ہم تو یہ کرتے ہیں، نہیں، ہمیں تو فلاں نے اجازت دی ہے، نہیں، ہمارے پاس تو فلاں مجبوری ہے، اور مجبوری کے تحت تو صحیح ہے نا یہ کام. یعنی اتنی تاویلیں ہیں جو ہم، کوئی یہ کہہ کے نہیں کرتا کہ یہ غلط کام ہے اور میں کر رہا ہوں، بہت ہی کم کوئی ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں نے تاویلیں بنا لی ہیں. آج میوزک کے اوپر آپ بات کر لیں، کتنی تاویلیں ہیں لوگوں کے پاس، نہیں وہ تو ایسا، نہیں وہ تو ایسا. داؤد علیہ السلام کے بھی تو مزامیر تھے، داؤد علیہ السلام نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کے اوپر اتنی بڑی تہمت، کوئی خدا کا خوف بھی نہیں کرتے، داؤد علیہ السلام یہ میوزک سنتے تھے، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ان کے اندر، یہ کہاں سے تاویلیں لے آتے ہیں، ایک پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے ہی چیز کو جائز کرنے کے لیے کدھر تک چلے گئے. استغفر اللہ، کہاں وہ زبور پڑھنے والے، کہاں ان کے وہ زبور کے ترانے، تم بھی قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھو. پھر انہوں نے کہاں سے کہاں میچ کر دیا، نہیں کہاں لکھا ہوا حرام ہے، حرام تو کوئی ہے ہی نہیں، حرام لکھا ہوا دکھاؤ پہلے. استغفر اللہ، تو جب بات نہیں ماننی ہوتی نا تو پھر لوگ تاویلیں کرتے ہیں، پھر ہم لوپ ہولز نکالتے ہیں، پھر ہم اس طرح سے طرح طرح کے ہیلے بہانے تاویلیں جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں. ارے وہ تو حجاب تو اس زمانے کے لیے تھا نا، وہ تو منافقین اس زمانے میں رہتے تھے نا، تو اس لیے حجاب کہا گیا. آج تو سارے متقی پرہیزگار ہیں، آج تو کوئی منافق ہے ہی نہیں، تو لہٰذا آج کس حجاب کی ضرورت ہے. کسی نے کہا اس زمانے میں گرمی بہت ہوتی تھی تو اس لیے کہا گیا تاکہ اپنے سر کو کور کر لیں کیونکہ گرمی بہت ہے. ہاں تو گرمی لگ جاتی اس لیے، تو اس کو پھر اس کا مطلب اسلام تو صرف عرب کے لیے تھا، باقی پوری دنیا کے لیے تو نہیں، اور رہتی دنیا کے لیے بھی نہیں ہے پھر یہ کہنے کا مقصد ہے، کیونکہ رہتی دنیا کے لیے تو یہ احکامات کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے خود ہی بنا سکتے تھے. تو یہ تاویلیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اس لیے کہ جو تاویل کرنے والا انسان ہے نا وہ کم ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی اصلاح کرے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں تو صحیح ہوں نا، یہ دیکھو اس کے پاس ایک ایکسکیوز ہے. جو انسان کہتا ہے نا یہ برا کام ہے میرے سے ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے اس کے لیے چانس ہے، جس نے تاویل دے دی وہ پھر اصلاح نہیں کیا کرتا. اور پھر تیسری بات یہ، ایسے لوگ اللہ کے حکموں کا مذاق کرتے ہیں، کے اندر لوپ ہولز ڈھونڈ لیتے ہیں، اندر ایسی ایسی حجتیں نکالتے ہیں، وہ اللہ کے حکموں کو مذاق بناتے ہیں. چوتھی بات ہمیں کیا نظر آئی یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو بچا لیا جو نصیحت کرتے تھے، ان کو بچا لی، یہ نہیں فرمایا کہ ایک کو جو کرنے والے تھے ان کو بندر بنا دیا، باقی سب کو بچا لیا، تیسرے گروہ کی کوئی بات نہیں آئی، صرف یہ فرمایا ان کو بچا لیا جو نصیحت کیا کرتے تھے. इसका मतलब तीसरे गुरु का क्या हुआ? वल्लाहु आलम, उनके साथ क्या मामला हुआ? यानी जो कहते थे ना कि तुम क्यों नसीहत करते हो, क्या जरूरत है हमें, हम क्यों बुरे बने? आप देखिए, बाज दफा हमारे सामने गलत काम हो रहे होते हैं, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं खामोश रहो, तुम्हें क्या जरूरत है किसी की उसमें टांग अड़ाने की, है ना? हम अपने सामने बुराई देख रहे होते हैं, हमें को पता है कि ये नमाज नहीं पढ़ता, हम नहीं नसीहत करते, हमने पता है कि ये देखो ये फलां गलत काम कर रहा है, हमारे सामने कर रहा होता है, फिर हम कहते हैं हमें क्या? आपस में कोई बातचीत बंद किए हुए बैठे हुए, हम कहते हैं हमें क्या? दोनों से हम मिलते रहेंगे लेकिन उनको कभी नसीहत नहीं करेंगे कि नहीं तुम सुलह कर लो। आज भी आप देखें फैमिलीज के अंदर हमारी, बाज दफा हम ऐसे मकाम पे होते हैं, यानी हमारा वो दर्जा होता है, हम बड़े होते हैं उस फैमिली के, लेकिन हम कहते हैं हम क्यों बुरे बने? आज को तो हर एक को ये फिक्र है ना कि हम बस अच्छे रहें। जैसे मैंने आपको बताया, सुलह कराने में कोई कोशिश नहीं करेगा, अपना अपना सब उल्लू सीधा रखेंगे, उधर भी जाके मिलेंगे, उधर भी जाके मिलेंगे, लेकिन कहेंगे किसी को कुछ नहीं। हम कहते कहां पे और कब कहते हैं? जब खूब उनके साथ हंस खेल लेते हैं ना, फिर घर आके बोलते हैं, देखा था उसको फलानी ने, देखा था क्या पहना हुआ था फलाना, देखा उन्होंने अपनी शादी पे क्या किया था, फलाने देखे क्या कर रहे थे, तब हम बोलते हैं। उसको नहीं सिर्फ कहते, बाकी सबको कहते हैं। या जब हम खूब फेसबुक पे लोगों की फोटोज देख लेते हैं, बड़े शौक से देखते हैं एक एक तस्वीर को टाइम लगा के, उसके बाद फिर हर तरफ कहते फिरते हैं, देखा था जरा उसको, फलानी को मैंने देखा फेसबुक पे ये कर रहे थे, फिर हर तरफ कहते हैं बताते हैं, तो हमने क्या किया? ये इसलाह है? या तो देखें ही ना, या फिर उनसे कहें, यही तो अमर बिल मारूफ व नहीं है मुनकर है, जो इस उम्मत के ऊपर फर्ज है, लाजिम है। लेकिन देखें, बचाया अल्लाह ने किनको, जो मना करते थे, जो कहते थे, हमारे पास अथॉरिटी होती है कहने की, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, क्यों मैं कहूं, मुझे क्या लगे? भाई आपकी जितनी भी आपकी पावर है उतना तो कहें, अपने सामने देखते हैं और बस बोलते नहीं है, बोलेंगे तो माइंड ना कर ले, माइंड कर ले चाहे, लेकिन वहां पे माइंड ना करे लेकिन चाहे जहन्नुम में जले वो हमें कबूल है। बाज दफा हमारे अपने बच्चे होते हैं, बाज दफा पोते पोतियां नवासे नवासियां होते हैं, नहीं कहते, क्यों कहें हम? फजाल नाहा नकाल लीमा बईना यदैहा वमा खल्फहा व मौइदतन लिलमुत्तकीन, तो हमने बना दिया इसको इबरत आगे वालों के लिए भी, यानी जो मौजूद है उनके लिए भी और जो बाद में आने वाले हैं उनके लिए भी, खल्फ यानी पीछे यानी बाद में आने वाले। सोचें जिन्होंने देखा होगा अपने सामने अपने रिश्तेदारों को बंदर बना हुआ और रोते हुए उनको देखा होगा, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, कितना बड़ा उनके लिए सबक होगा, कितने वो डर गए होंगे, और वो उन्होंने फिर आगे आगे अपनी नस्लों को ये वाक्या सुनाया। और मौइदा लिल मुत्तकीन वाज है मुत्तकीन के लिए, किसी के लिए तो इबरत का सामान है, और जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके दिलों को नरम करने वाली ये बात है कि वो भी डर जाएं कि ये काम कभी नहीं होना चाहिए कि तावीलें करें हम। बात मछलियां पकड़ने की नहीं है, बात है अल्लाह के हुक्म को डिस्टॉर्ट करने की, ये बात है। कैसे ये डिस्टॉर्ट करते हैं, कैसे उसको तरोड़ते मरोड़ते हैं और अपने मतलब का बनाते हैं, इसकी बात है। तो अब मछलियां हो ना हो, लेकिन बहुत सारे अल्लाह के हुक्म आएंगे जो हमें नहीं पसंद होते, जो हमें होता है कि इससे कैसे हम किसी तरह निकलें, फिर हम उसके अंदर से कैसे चीजें निकालते हैं ना, पॉइंट्स देखें जरा हम किस तरह निकालते हैं, कि सारा अपना दिमाग उस पर लगाते हैं कहां से निकालें पॉइंट, क्योंकि मर्जी क्या होती, करना नहीं है, जब करना मुश्किल लगता है ना तो फिर ये हरकतें होती हैं। और आप ये देख लें कि जिन्होंने तावीलें की, वाकई हफ्ते वाले दिन तो खड़े नहीं हुए थे, फिजिकली तो नहीं खड़े हुए थे, उसके ऊपर भी इतनी सजा है, और जो खुल्लम खुल्ला कहें कि हाँ हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और हम ऐसा कर रहे हैं और हम करेंगे, और धड़ल्ले से इसके ऊपर बेखौफ होके और अल्लाह को ललकार के करें, उनकी फिर कितनी बड़ी सजा होगी। और नकाल में और मौएजा में फर्क क्या है? नकाल है ऐसे कि इबरत पकड़ ले कोई इंसान, और मौईजा ऐसे है जैसे नकाल समझ ले दवाई है और मौईजा समझ ले गिजा है। दवा और गिजा में फर्क होता है ना, दवा किसके लिए होती जो बीमार होता है, और गिजा किसके लिए होती जो ठीक होता है, लेकिन गिजा तो उसको भी चाहिए ना। ईमान वालों के लिए गिजा है, मौईजा है, दिल उनके नरम हो जाए, और उनके लिए तो बहुत बड़ी सख्त बात है। तो अब आपने देखा पहले वाक्य से क्या समझा, जब अल्लाह का हुक्म आए तो क्या करना है, तावीले नहीं ढूंढनी, ठीक है, हुज्जते नहीं, उसके बाद उसको डिस्टॉर्ट करके अपने मतलब का नहीं बनाने की कोशिश करना, उसको एज इट इज कर लेना। और क्या समझ आया कि अल्लाह ताला के हुक्मों के आगे हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, झुकने का, ठीक है। अच्छा अब ये एक आपको बात समझ आई, अब दूसरी बात कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो और उनका क्या बिहेवियर था, ये हम नेक्स्ट आया से समझते हैं, नेक्स्ट वाक्य से, ठीक है। तो ये दोनों बातों को आपने समझ लिया, क्योंकि हम भी अल्लाह ताला के अहकामात को पढ़ेंगे कुरान में, अल्लाह ताला के हुक्म आएंगे, अभी तो नहीं आ रहे कोई, अभी तो आपने कुछ नहीं ऐसा पढ़ा, लेकिन आएंगे आगे आगे अहकामात, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये बिहेवियर करना है जो 65 आयत में आया, या ये बिहेवियर करना है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, या वो बिहेवियर रखना है जो सहाबा का था, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا, जब कहा मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कि अल्लाह ताला हुक्म देता है तुमको कि तुम ज़िबा करो बकरा को, ये कब आया हुक्म, क्यों आया, क्या वजह थी इसकी? आपको पता है एक अजीब बात आप सुने कि क्या रीजन था इसका, ये कहां बताया गया, पूरा जब बात खत्म हो गई आयत नंबर 72 में बताया गया। अच्छा होना क्या चाहिए था, हमारे सीक्वेंस के लिहाज से तो पहले ये बताया जाना चाहिए कि क्यों उन्होंने कहा, फिर उसके बाद ये बात आती, पहले वाक्य आता जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, और फिर ये आता कि उन्होंने उनको इस वाक्य के लिए हल ये बताया। लेकिन ऐसा क्यों है कि पहले ये बात आ गई और बाद में वो आया, इसकी बड़ी हिकमतें हैं और वो हम देखते हैं। पहले मैं आपको वाकया बता दूं, वाकया ये है कि बनी इसराइल में एक आदमी तो बहुत अमीर था, बाज जगह पे आता है कि उसकी एक ही बेटी थी, बाज जगह पे आता है उसकी कोई औलाद नहीं थी, बेसिकली उसका कोई बेटा नहीं था जो आगे इनहेरिट करे उसकी जो विरासत, उसका सिर्फ एक भतीजा था, और सारी विरासत इस भतीजे को ही मिलनी थी। आदमी बहुत कंजूस था, खर्च नहीं करता था किसी के ऊपर भी। अब भतीजे को जाहिर है हम ऐसे ही नहीं कहा गया कि रिश्तेदारों पे खर्च करो, जब रिश्तेदारों पे खर्च नहीं किया जाता ना तो फिर उनके दिल में हसद भी पैदा होता है, दुश्मनियां भी पैदा होती हैं, फिर वो कहते हैं ये क्यों खा रहे हैं और हम क्यों बैठे हैं। तो अब ये भतीजे ने जब देखा कि चचा तो इतना अमीर है और ये सारा कुछ मुझे मिल सकता है अगर ये मर जाए, तो उसने एक प्लान किया, ने कहा हम क्यों इस तरह, मैं क्यों ऐसे बैठा हूं, क्यों ना इसको कत्ल ही कर दूं ताकि जल्दी मुझे मिल जाए, इंतजार भी करने की क्या जरूरत। तो लिहाजा उसने अपने चचा को कत्ल कर दिया और कत्ल करके किसी और के दरवाजे पे फेंक आया। आपको पता है इनमें 12 कबीले थे ना बनी इसराइल में, जब हमने 12 चश्मों की बात पढ़ी है पहले, तो एनी हाउ किसी के दरवाजे पे फेंक आया, सुबह को उठ के शोर मचा दिया, मेरा तो चचा ही नहीं मिल रहा। अब जब देखा गया, तलाश किया गया, तो वो जिसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। अब ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, क्योंकि ये तो गर्मा गर्मी वो कहते हमने तो नहीं कत्ल किया, ये कहने लगा नहीं कत्ल किया और अब मुझे इसका खून बहा भी दिया जाए, यानी एक तो मैं इसकी जायदाद लूं और उसके बाद इनसे भी माल लूं। आपको पता है आप विरासत में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कि जो किसी का कातिल होता है ना, यानी एक आदमी ने अगर किसी को कत्ल किया, जैसे इसने भतीजे ने चचा को कत्ल किया, तो वो अपने चचा का कभी वारिस नहीं बन सकता, कातिल अपने मकतूल का वारिस नहीं बनेगा, तो इसको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो और ज्यादा लेने के चक्कर में था। अब ऐसे में उन्होंने कहा, इतना बड़ा एक फसाद खड़े लगा, क्योंकि आपको पता है कबायली जिंदगी के अंदर ये बड़ी इजी होता है, कत्ल तो बड़ी बहुत बड़ी बात है, तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और जंगें हो जाती हैं और कत्लो गारत होता है। तो ये बड़ी जंग एक शुरू होने लगी थी, दोनों तरफ से तुल गए थे जंग के लिए, कि वो कह रहे थे हमने नहीं कत्ल किया, ये वाले कह रहे थे कि भाई तुमने किया, हमारे बंदे को मार दिया। जिस सोसाइटी के अंदर ना, एक मुसलमान के ऊपर तो मुसलमान का, और ये मुसलमान ही सोसाइटी है, ठीक है, ये उस वक्त के मुसलमान है ये, अब हम तो नहीं आए थे ना इस्लाम, ये वाली जो हमारा दीन है ये तो नहीं आया था, यहूदियत ही उस वक्त इस्लाम थी, जो मूसा अलैहि सलाम मजहब लेकर आए थे वो इस्लाम ही था। तो वो जो मुसलमान है, मुसलमान के ऊपर तो हराम है दूसरे मुसलमान का जान माल इज्जत, लेकिन जिस सोसाइटी में एक मुसलमान ही मुसलमान का खून करने लगे ना, तो समझ ले उस सोसाइटी का जवाल शुरू हो गया, क्योंकि फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो आपस के अंदर ही लड़ लड़ के खत्म हो जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि इसी वजह से कत्ल के ऊपर किसास रखा गया, कि कत्ल आम ना हो जाए, कि लोग जिसको मर्जी मारते फिरे। अब क्या हुआ कि इससे पहले कि बड़ा कोई जंग शुरू होती, उन्होंने कहा हमारे अंदर जब पैगंबर मौजूद हैं तो चलो जाके उनसे पूछते हैं कि अब इसका क्या हल करें। अब वो पैगंबर के पास आए हैं, अब यहां से ये बात शुरू हो रही है कि जब उन्होंने आके ये सारा किस्सा बताया, तो मूसा अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, वो इज, मैंने आपको क्या बताया, इज किस लिए होता है, याद करो वो टाइम जब ऐसा हुआ था, इज हमेशा पास्ट के लिए होता है, ठीक है, ये लिख लें, इज जब भी आएगा वो पास्ट के लिए होगा, माजी के लिए, इजा जब आएगा ना तो वो फ्यूचर के लिए होगा। तो इज जब कहा मूसा, कौला कहा मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय को जिबा करो। अब ये वो क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, जानते हैं क्यों कह रहे हैं, वो खुद भी कह सकते थे इस बाहु बकरा, बकरा को जिबा करो, वो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये कौम मेरी नहीं बात सुनेगी, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने इस चीज का ये बताया है, इसका सलूशन कि तुम बकरा को जिबा करो, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने आगे से क्या कहा, कालू अतखिदुना हुजुआ, अतत्तखिदुना, तुम बना रहे हो हमको मजाक, तुमने हमें मजाक समझा, मैं, यू आर मेकिंग अ जोक आउट ऑफ अस, क्या कह रहे हो, यानी अच्छा अगर एक आम आदमी ये बात कहता तो फिर तो समझ आती है ये जवाब, आम आदमी कहे आप उससे पूछने के लिए गए हैं कि मेरे इस मसले का हल क्या, तो वो कहे जाके गाय ज़िबा करो, तो आप कह सकते हैं भाई मैं मसले का हल पूछने आया हूं, तुम कह रहे हो गाय ज़िबा करो, ये कैसी बात। लेकिन आम आदमी ऐसा कहे तो ये जवाब बनता है, लेकिन जब अल्लाह का रसूल ऐसी बात कह रहा हो तो फिर उम्मत को समझना चाहिए और ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि ये जो बात कह रहे हैं और ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो फिर हम बगैर चूं चरां के ये बात को मान लें, और हम ये ना कहें ये क्या मजाक है आपने बनाया हुआ, आपने हमें मजाक समझा हुआ। ये वो किसको कह रहे हैं, सबसे पहली क्या बात पता चलती है, लैक ऑफ अदब, अदब नहीं है। और सहाबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अदब सबसे पहले सिखाते थे, अगर अदब नहीं है ना तो फिर आप कुछ भी इल्म भी ले लें कोई फायदा नहीं है। याद रखें एक बात, ये आगे भी जाके ये बात के ऊपर हम करेंगे, बनी इसराइल में इल्म की कमी नहीं थी, जी हाँ इल्म की कमी नहीं, अगर आप समझते ना कि इन लोगों के पास इल्म नहीं था, वो बेचारे उनको क्या पता, नहीं इल्म तो बहुत था इनके पास, इल्म की कमी नहीं थी, फिर प्रॉब्लम क्या था वो आगे बात समझ आएगी आपको इनकी हरकतों से, ये प्रॉब्लम क्या थे। तो इनको ये ना समझे कि अनपढ़ थे बेचारे, ना समझ थे, उनको पता ही नहीं था, नहीं, तो यहां पे क्या पता चला, अदब नहीं था, एक पैगंबर के साथ जैसे बात करनी है या एक पैगंबर के हुक्म को जैसे समझना है, और वो पैगंबर भी ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, अव्वल तो अगर वो ये भी कहें तो फिर भी मानना है, वो खुद कह रहे हैं अल्लाह ने फरमाया है, कह रहे हैं हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं, यानी इनको पैगंबर के ना मकाम और रुतबे का कोई एहसास है, ना उनकी कोई बात का उनको कोई पास है कि ये क्या हमें हुक्म दे रहे हैं, क्या समझ आई यहां से। हम साथ साथ लेकर चलते हैं ना, ताकि हर बात से हमें सबक समझ आए, क्या बात समझ आई, पैगंबर के हुक्म के आगे अगर उनका हुक्म नहीं भी समझ आ रहा, वो कह रहे हैं बकरा को जिबा करो, नहीं तुम्हें समझ आ रहा, लेकिन ये काम नहीं होता कि आगे उनके ये कहें ये क्या बात हुई है, आज तो नहीं हम ऐसे करते। पैगंबर अपनी जात में तो मौजूद नहीं, लेकिन उनके फरामीन तो सब मौजूद हैं, एज इट इज मौजूद हैं। अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई है और अहादीस हमारे तक प्रिजर्व्ड फॉर्म में पहुंची हैं। हमें पता है कि कौन सी सही हदीस है, हमें पता है कि हदीस की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ऑथेंटिक है ये, हमें पता है ऑथेंटिक अहादीस का, ज़ईफ हदीस की नहीं बात कर रहे, ऑथेंटिक अहादीस। फिर आगे से बातें क्या होती हैं, लो ये क्या बात हुई, लो ये तो औरत की आधी गवाही, ये क्या बात हुई, फिर ये क्या बात हुई कि फिर ये हमें इस तरह का हुक्म दिया जा रहा। मिसाल के तौर, मैं एक आपके सामने मिसाल रखूं, एक मिसाल रखूंगी कि बहुत सारे लोग तिलमिला ना जाए लेकिन रखती हूं, लेट्स सी आपका क्या रिएक्शन होता है। मैं उनके बात, उनकी बात को तो बड़ी जल्दी कह रहे हैं ना, लेट्स सी आपका क्या रिएक्शन होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कहा भाई जाओ आप जाके, उनको कोई बीमारी हो गई थी, ऊंट का पेशाब पियो, आपको कोई पीने को नहीं कह रहा, लेकिन उसके बाद क्या, ईयू आओ, किसके ऊपर कर रहे हैं, हदीसे रसूल है, वाजे है, बुखारी में है, और इसके बाद हमारे क्या एटीट्यूड्स हैं, हम क्या रिएक्शन शो करते हैं, हम क्या आगे से कहते हैं। और एक नहीं है, आप खाने के बाद उंगलियां चाटने की बात को देख ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्या करते हैं हम, आप देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला हुलिया दे, आपके सामने कोई दाढ़ी वाला आ जाए, उसके टखने भी नंगे हैं, उसने अपनी पैंट्स इतनी ऊंची करी हुई है कि टखने नंगे हो रहे हैं, तो आपको क्या याद आता है, अस्तग़फिरुल्लाह, और हंसी छूट जाती है, या फिर नागवारी सी चेहरे पे हो जाती है, हाय हाय इसको तो पता ही नहीं है कि दुनिया में रहना कैसे है, बिल्कुल ही बैकवर्ड, जाहिल, गंवार। बड़ी हैरत होती है हमें बनी इसराइल के रवैयों पर, लेकिन वही रवैये हमारे भी हैं, माजरत के साथ। और भी कई चीजें बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी बातों के ऊपर जो हमारे नबी ने कही, दम तो बहुत भरते हैं मोहब्बत का, 12 रबीउल अव्वल आ जाए तो बस गिरते पड़ते उठते हैं, कैसे बस क्या कर जाए हम, लेकिन हाल ये है कि उनके फरामीन के आगे हमारा भी यही हाल होता है। नो वे आई कैन नॉट डू दैट, नो वे, ये किस चीज को कह रहे होते हैं, तो हदीस तो छोड़े कुरान की बातों को कह रहे थे, नो वे हम तो नहीं ये कर सकते, किसको जवाब दे रहे हैं, ये भी तो अपने पैगंबर को ही कह रहे हैं। उन्होंने आगे क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से कोई बातें कही हैं, फरमाया नीचे कोई गिर जाए तुम्हारी रोटी, कोई खुश्क चीज गिर जाए तो उसको झाड़ के तो खा लो, आप बेशक ना खाएं लेकिन इस चीज को बुरा ना समझे, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप किसी बीमारी के लिए, आपको पता है आज जो मिस्र के अंदर एक जगह है वहां पे उन्होंने बनाया बाकायदा एक, वो बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए लोग वहां पे इलाज के लिए आते हैं और यही ऊंट का पेशाब पीते हैं, तो अब ठीक हो गया, या और वो जो अब वो कैप्सूल में बना के दे दें, किसी शरबत में डाल दें, कोई किसी कैंसर का इलाज इसके अंदर निकल आए तो फिर देखना भागेंगे पीने को, लेकिन जब नबी की हदीस है ना तो उसको बुरा जानेंगे, कोई पीने को नहीं कह रहा लेकिन कम अज कम हदीस को ना बुरा समझो। आपको कहा गया भाई पानी के अंदर कोई चीज गिर जाए, इस तरह कोई मक्खी है तो उसको फिर डुबो के दूसरा पार और फिर पी सकते हो आप, आपने नहीं पीना ना पियो, मगर उसके ऊपर ई ऊ ना करो, उसके ऊपर नाक मुंह ना चढ़ाओ, क्योंकि आप नाक मुंह किसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, नबी की बात पे, ये चीज है बुरी। आप लौंडियों के ले आए, कोई लौंडियों का जरा निकाल के तो देखें उसके बाद हमारे लोगों के हाल क्या होते हैं, आप 4 शादियों के ऊपर बात कर लें, तो यानी कितने सारे में एक नहीं है, बेशुमार दीन की ऐसी चीजें हैं, हमारी अपनी क्लोजेट्स में स्केलेटन्स हैं, ऐसी चीजें हैं कि हम अगर आप सोचें तो कितनी जगहों पर हम खुद एतराज करने वाले होते हैं। क्योंकि बस हमारे आज के जमाने के नॉर्म्स के मुताबिक वो नहीं है। हाँ, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो वो ठीक है, लेकिन ऐसे ये नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं हम, क्योंकि वो आज के नॉर्म का नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर एतराज करने लगते हैं। उनको भी तो कोई बात नहीं समझ आई थी, इसलिए उन्होंने एतराज किया। उनकी बात हमें अजीब लगती है, और हम जो बेशुमार बातें ऐसी करते हैं, जब हमारे नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह ने ये हुक्म दिया, या वो खुद फरमा रहे हैं कोई बात, वो भी अल्लाह की तरफ से आई है, हमारा ये ईमान है, ये अपनी ख्वाहिश से नहीं कुछ कहते थे, फिर भी उसके आगे हम बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं। तो उनका जो खास, उनका रिप्लाई अल्लाह ताला ने, जो उन्होंने जवाब दिया ना अपने नबी को, वो यहां पे कोट किया, और कुरान का कोई चीज बेकार नहीं है, कोई चीज बेकार नहीं है, कोई एक लफ्ज भी इसमें फालतू नहीं है। उनका इतना अजीब जवाब था, बुरा जवाब था, अल्लाह ताला ने उसको भी कोट किया यहाँ पे। ये वो उन्होंने ये जवाब दिया मूसा अलैहि सलाम को, यानी उन्होंने अपने नबी की इतनी भी नाइज्जत रखी, उन्हें ये नहीं सोचा वो किसको कह रहे हैं, क्या रसूल अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाएगा कि वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। जैसे आज बाज मुसलमानों ने भी ये किया हुआ ना, दीन को हंसने हंसाने की चीज बना लिया, रसूलों का ये काम नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लतीफे सुना सुना के लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे, कभी आपने सुना कि उनको जोक सुनाए हो और फिर उसके बाद उनको हंसाया हो और उसके बाद उनको बताया हो? लेकिन आज हमारा मिजाज कैसा बन गया इस उम्मत का कि वो कहते हैं ये तो बहुत सीरियस बातें करते हैं, और ये तो बहुत डराने वाली बातें करते हैं, चलो वहां चलते हैं जहां पे लतीफे हों, जोक्स हों, मजा आए, वो कोई कॉमेडी प्रोग्राम है, ये दीन को कॉमेडी बना लिया, या तो खाना पीना हो या फिर कॉमेडी हो, वहां पे कोई कोई उछल उछल के आपको बता रहा हो या कोई हंसा रहा हो, तो वहां पे जाके हमने दीन भी वहां से लेना है, ये हमारा देखो जौक भी क्या हो गया। और जहां पे कोई सीरियस बात हो रही हो, नहीं 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 ये तो बड़ी डरा देने वाली बातें हैं, ये नहीं, या ये तो बड़ी सीरियस बातें हैं, उनमें दिल ही नहीं लगता, इनमें मजा नहीं आता, मजा वहां आता है। लेकिन अंबिया का ये काम नहीं होता था कि वो मजाक करें। देखिए मजाक और मजा में भी फर्क होता है ना, ये उतर मॉक करना किसी को, वो कह रहे हैं आप हमारे साथ इस तरह मजाक कर रहे हैं, قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين, उन्होंने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं मैं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। यानी जाहिल का मतलब यहाँ पे क्या है, जाहिल एक तो होता है ना, आलिम के मुकाबले में कहते हैं जाहिल, ठीक है, एक आलिम है और एक जाहिल है, ये वो जाहिल नहीं है मुराद यहाँ पे, एक जाहिल वो भी होता है जो जज्बात को कंट्रोल ना कर सके, वो भी जाहिल होता है, लेकिन यहाँ पे जाहिल किसको कहा जा रहा है, यानी जो अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक करे, वो चाहे पीएचडी क्यों ना हो, वो कह रहे हैं ना आप हमारे से मजाक करते हैं, ने कहा मैं मजाक करूंगा, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं कि मैं तुमसे मजाक करूं ऐसी बातों में, कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया मैं उसे मजाक बना के, तुम ये कुछ पूछ रहे हो और मैं कह रहा हूं अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम जाओ जाके गाय जिबा करो, ये कोई मजाक की बात है। तो इससे भी पता चलता है कि देखें, अगर एक पैगंबर के साथ लोग बहस कर रहे हैं और वो आगे से ये बात कह सकते हैं, तो हमसे भी कोई बहस करे ना, तो हम भी कोई इसके अंदर शर्म की बात नहीं कि हम कहें औजु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले शैतान मरदूद से, हम कहते हैं उस वक्त मैं क्यों औजु बिल्लाह कहूं, ये कहे ना औजु बिल्लाह, नहीं, ये पैगंबर है और वो भी अल्लाह की पनाह ले रहे हैं ये जाहिलाना बातों से। और दूसरे मैंने कहा ना, जाहिल वो भी होता है कि जो जज्बात को कंट्रोल ना कर पाए, तो वो कहते हैं ये नहीं कि मैं, यानी ये ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए तो अल्लाह ताला मुझे इससे भी अपनी पनाह में ले ले कि मैं आप कोई बात कह दूं तुम्हें, गुस्से यानी तुमने इतनी बुरी बात कही है, क्योंकि जब वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह की बात को भी नहीं तुम समझ रहे, तुम जो जो कह रहे हो कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो तुम अल्लाह की बात को यानी ये कह रहे हो। अच्छा, अब जब मूसा अलैहि सलाम ने ये कहा, तो अब आगे देखें उनकी बात। अच्छा, एक और बात यहाँ पे हमें समझने की है, थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन उसको थोड़ा अगर हम समझ लें ना तो कई चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए जब उन्होंने वो कहते ना ये क्या बात हुई, हम गाय ज़बह करने का कह रहे हैं, ये क्या हुआ, ये तो मजाक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि देखिए उनको नहीं समझ आई थी, ठीक है अगर मान लिया जाए उनको नहीं समझ आई थी कि उसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, गाय ज़बह करने का कातिल के पता करने से क्या रिलेशनशिप है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इतनी जंग होने लगी है और इतना बड़ा मसला पड़ गया और आप कह रहे हैं गाय ज़बह करो, नहीं समझ आई थी ना उनको लॉजिक, तब उन्होंने आगे से ये कहा। इससे हमें पता चला कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हम उसमें लॉजिक तलाश ना करें, है ना। जो जैसे हम कहते हैं ना मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं नजर आती, ये क्या बात हुई, ये कुरान का हुक्म ऐसे है क्यों इसके अंदर ऐसे, ये तो कोई सेंस मेक नहीं करता। तो देखें ये हमें अब जरूरत नहीं है कि हम इसमें सेंस मेक करना, ये तलाश करें लॉजिक तलाश करें। ये पता है किस वक्त काम होता है, ये पता है किसका काम है, जो अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ठीक है, जो इस्लाम से बाहर खड़ा हुआ है ना, उसको कहा गया तुम अच्छी तरह देखो सोचो समझो फिर इसमें दाखिल हो, ठीक है ना। उसके पास चॉइस है, वो कह सकता है जी इसके अंदर मुझे सेंस नहीं मेक करता, ये नहीं है, ये इसमें मुझे लॉजिक बताएं, वो इस तरह के सवाल कर सकता है। लेकिन वंस आप इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए ना दाखिल, आपने कह दिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह और आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मान लिया ना, उसके बाद आपका दरवाजा बंद हो जाता है इस किस्म के सवालात करने का या ऐसी बातें करने का या ये कहने का मुझे बताएं इसके अंदर क्या लॉजिक है, इसमें क्या सेंस है, ये मुझे बताएं। ये नहीं कि आप सवाल नहीं कर सकते, आप सवाल कर सकते हैं, मगर सवाल कैसे होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि ये कैसे होगा ये मुझे समझा दें, ये किस तरह से इसके ऊपर अमल करना ये समझा दें। ये नहीं कि आपका सारा फोकस किसके ऊपर है, मुझे इसके अंदर से कोई बताए ना इसका फायदा क्या है, क्यों ये हुक्म दिया गया है, क्यों ऐसे कहा गया, मुझे तो नहीं वैसे ये बात, ये क्या बात हुई फिर, ये क्यों है, ये कैसे हो सकता है। ये फिर अब आपने अपना राइट गिव अप कर दिया जब आप इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए ना, क्योंकि आपने अल्लाह को क्या मान लिया, आपने अल्लाह को अलीम माना है, खबीर माना है, आपने इलाह मान लिया, आपने अल हकीम मान लिया, जितनी अल्लाह की सिफातें आपने मान ली है ना, जब आपने अल्लाह को रब माना खुदा माना तो वो हस्ती माना उसकी सारी सिफात को मान लिया, तो अब जब आपने कह दिया कि मसलन एक सिफत सिर्फ ले लो अल्लाह अल हकीम है, आपने मान लिया ना जब आपने अल्लाह को एक मान, अब आप कैसे कह सकते हैं इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं, इसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। जब आपने मान लिया कि उस अल हकीम ने ये हुक्म दिया है तो फिर अब आप नहीं कह सकते इसमें कोई लॉजिक नहीं है या इसमें क्या बात इसमें तो कोई बात ही नहीं समझ आती, ये तो कुछ है, फिर तो बस आप कहें कि जो अल्लाह ने कह दिया वो जो अल हकीम है उसने हुक्म दिया है ना तो मुझे मानना है, फिर आप कहें वो अल अलीम है उसने हुक्म दिया मुझे मानना है, फिर आप कहें वो मेरा इलाह है वो मेरा रब है मैंने उसको मानना है उसका हुक्म है मैंने करना है ये, फिर आप ये नहीं, फिर ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो सकते, उस तरह के क्वेश्चन उसके हो सकते हैं जो मुसलमान नहीं है। आप तो सब कुछ समझ के, सब कुछ एज्यूम किया जाता है कि आप सब समझ के ही मुसलमान हुए हैं, जब नहीं हुए थे तो ला इकराह फिद दीन, फिर दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, आपने आना है आए इस दुनिया, नहीं आपको समझ आती ना आए आप, लेकिन आप जब आ गए हैं फिर ये क्वेश्चन करने का क्या तुक बनता है कि अब हम हमारा ना आज मिजाज पता है क्या हो गया, हम इस दीन को री एग्जामिन कर रहे हैं आज, अपनी अकल से री एग्जामिन करने की कोशिशें कर रहे हैं आज, जो कि हमारे लिए नहीं बनता सवाल, हम मुसलमान हैं हम ऑलरेडी मान चुके हैं, अब फिर जाके वापस पलट के पॉइंट जीरो पे चले जाना ये तो नहीं हो सकता। आइदर अल्लाह माफ करे अल्लाह हम सबको महफूज रहे, आइदर तो ये कोई कहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं अब मैं दोबारा रीवैल्यूएट करूंगा इस दीन को फिर मैं इसमें दाखिल लूंगा, वो तो एक समझ आई, लेकिन एक कहता है कि मैं मुसलमान भी हूं साथ वो ये भी ढूंढ रहा है कि भाई इसके अंदर क्या है ये क्या, भाई फिर तो कहना चाहिए भाई इसके अंदर क्या लॉजिक है क्या लॉजिक नहीं, मुझे तो ये अमल करना है, लॉजिक समझ आए जब आएगी, पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, पूरी जिंदगी 10 साल में आए 20 साल में आए या आए ही नहीं आई डोंट केयर, اللہ نے مجھے حکم دیا، میرے خدا نے. او بھائی یہاں پہ تو لوگ استغفر اللہ محبوب بناتے ہیں عورتوں کو، اور ان کے اوپر شاعری کرتے ہیں، اور کہتے ہیں تو مجھے جو بھی کہہ، سجدہ کہہ میں سجدہ تجھے کروں گا، پوجنا ہے تو پوجنے کی بھی کرتے ہیں کہ میں تجھے پوجتا ہوں، تو حکم دے تو میں وہ جب انسانوں کے لوگ ایسے غلام بن جاتے ہیں، جب ان کو خدا بنا لیتے ہیں، وہ تو تمہارا خدا ہے، تم اس کو کوسچن کر رہے ہو؟ عقل کدھر چلی گئی تمہاری؟ مسلمان کی تو زبان پہ یہ آ ہی نہیں سکتا، یہ کیوں، یہ کیسے، یہ کیا، نو دس از ناٹ پاسبل، یہ کیا بات ہوئی، اس میں لاجک بتائیں، ڈزنٹ میک اینی سینس. جیسے وہ کہہ رہے ہیں، کتنی بری لگی اللہ کو ان کی بات نا. اور روزانہ ہمارے، ہم مسلمانوں میں ہم یہ کہتے ہیں باتیں. ربی تو کافی چیزیں نہیں ہمیں پتا ہوتی، تو وہ تو ویسے ہی جو جو پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیوں شادی کی اس وقت، ان کی تو عمر اتنی چھوٹی تھی، یہ تو ہمارا کامن اعتراض ہوتا. ہم کون ہیں یہ کہنے والے، جب ہم نے ان کو رسول مان لیا، پتہ کتنی بڑی، یا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے نا کہ کسی کو رسول کہنا کیا بات ہوتی، یا ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ خدا ماننا کسی کو کتنی بڑی بات ہے. جب آپ نے کسی کو خدا مان لیا، ڈو یو ایون نو واٹ دیٹ مینس؟ ڈو یو ایون نو، آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ کسی کو خدا ماننا کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مان لیا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہسبینڈ نہیں مانتے کیا کریں، امی نہیں مانتی کیا کریں. وہ امی اور ہسبینڈ کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ آپ نے اللہ کو خدا بنایا، ہسبینڈ تو ہسبینڈ ہے صرف، وہ تو ایک انسان ہے، وہ اس کا آپ سے تعلق ایک شوہر بیوی والا تعلق ہے، ایک ہے خدا آپ کا، اور آپ اس کے بندے ہیں، آپ اس کے غلام ہیں، اور پھر کمپیئر کدھر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو رکھ رہے ہیں ہسبینڈ کی مرضی کیا. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں، کہ ہمیں آج تک کلمہ ہی نہیں پتا. ہم اور تو باقی سب چیزیں چھوڑتے ہیں، خدا کے لیے صرف کلمے کو سمجھ جاؤ، کلمہ کیا ہے، کیا کہتے ہو تم اپنی زبانوں سے. ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھے گا جو آخری، جس کا الفاظ یہ کلمہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ کلمہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. کسی کو خدا بنا لینا اور مان لینا بہت بڑی بات ہے. اگر یہ چھوٹی بات ہوتی نا، ایسے ہی کسی زبانوں سے بولنا تھا تو پھر کافر ابو جہل بھی بول دیتا اور کہتا تو کیا، سو واٹ، ایک لا الہ الا اللہ کہنا، محمد رسول اللہ کہنا تو میں کہہ دیتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے. اسی سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کرا سکتا ہوتا وہ، تو وہ کہہ دیتا. لیکن وہ بھی جانتے تھے، ایون کافر بھی، کہ یہ کیا ہے کلمہ، جو کتنی بڑی چیز ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو نہ خدا کو خدا سمجھا، نہ رسول کو رسول سمجھا، اسی لیے ان کی باتوں پہ بھی اعتراض ہیں اور قرآن کے حکموں پہ بھی اعتراض ہیں. اور پھر دیکھو ذرا ٹوسٹ کیسے کرتے ہیں قرآن کے حکموں کو، پھر دیکھا کریں آپ، اگر جب ان کے سامنے دکھا دیں گے نا، دیکھو یہ لکھا ہوا، پھر نو یہ تو اس زمانے کے، اس میں ایسا ہوتا تھا تو وہ ایسا ہوتا تھا. وہ کتے اس زمانے میں جو تھے نا، بڑے نجس تھے، اس لیے کتے کو گھر میں رکھنے سے منع کیا. آج تو کتے صاف ستھرے ہیں، بڑے اچھے کتے ہیں، تو آج تو گھر میں رکھ سکتے ہیں، آج رکھنے میں کیا اعتراض ہے. خنزیر اس زمانے بڑا گندا جانور تھا، آج تو دیکھو کتنے خوبصورت خنزیر ہیں، پنک کلر کے، اس کے اوپر سٹوری بکس میں لگے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو، ہم کدھر چلے گئے؟ آج تو ماتم کرنا چاہیے اس امت کی عقل کے اوپر بھی، ان کو کیا ہو گیا. ان کی تو باتیں پڑھ کے ہم کہتے ہیں، ہمیں تو دیکھیں کہ ہمارے اپنے مسلمان کیا بات آج کر رہے ہیں، کتنا زوال آ گیا اس امت میں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارا حال کیوں ہے ایسا. اللہ اکبر.